بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم معزز سامعین. آج ہم آپ کے لیے کتاب بونے اور دیو بچوں کے لیے ناول ریکارڈ کر رہے ہیں، جس کی مصنفہ شاہدہ بیگم ہیں. اس کتاب کے کل صفحات 186 ہیں. یہ کتاب آپ اقرا عبد الرحمن کی آواز میں سنیں گے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ اور اپنی رائے دینے کے لیے ہمیں اس نمبر پر رابطہ کریں، 0306-787-8222، یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.qurtuba.org www.qurtuba.org. آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم معزز سامعین. آج مورخہ 21 اپریل 2023 ہے. آج ہم کتاب بونے اور دیو بچوں کے لیے ناول ریکارڈ کر رہے ہیں، جس کی مصنفہ شاہدہ بیگم ہیں. اس کتاب کے کل صفحات 186 ہیں. آپ یہ کتاب اقرا عبد الرحمن کی آواز میں سنیں گے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ اور اپنی رائے دینے کے لیے ہمارے اس نمبر پر رابطہ کریں، 0306-787-8222، یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.qurtuba.org www.qurtuba.org. آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ 1. بونے اور دیو بچوں کے لیے ناول. شاہدہ بیگم، فیروز سنز پرائیویٹ لمیٹڈ، لاہور، راولپنڈی، کراچی. حصہ اول، باب 1. میرا باپ نوٹنگھم شائر میں ایک چھوٹی سی جاگیر کا مالک تھا. اس کے 5 بیٹے تھے، 2 بھائی مجھ سے بڑے تھے اور 2 چھوٹے. 14 سال کی عمر میں مجھے کیمبرج کے ایمینول اسکول میں داخل کر دیا گیا، جہاں میں نے تعلیم حاصل کی. پھر میں نے لندن کے ایک سرجن مسٹر جیمس بیٹ کے پاس 4 سال کام سیکھا. اس مدت میں میرا باپ وقتاً فوقتاً مجھے کوئی نہ کوئی چھوٹی رقم بھیجتا رہا. اس رقم کو میں جہاز رائی کے علم اور ریاضی کے حصول میں صرف کرتا رہا. یہ دونوں علم آگے چل کر بحری مہموں میں میرے لیے بڑے مفید ثابت ہوئے. سفر کے بارے میں مجھے شروع سے یقین تھا کہ وہ میری قسمت بنے گا، چنانچہ میں اکثر اس سلسلے میں منصوبے بناتا رہا، یہاں تک کہ مسٹر بیٹ کو چھوڑ کر اپنے والد کے پاس آ گیا، جہاں باپ، چچا اور دوسرے رشتہ داروں کی کوشش سے مجھے 40 پاؤنڈ ملنے لگے، جن میں سے میں نے 30 پاؤنڈ سالانہ جمع کیے اور 2 سال 7 مہینے تک طبیعت کا مطالعہ کر کے لیڈن چلا آیا. میرے استاد مسٹر بیٹ مجھ پر بہت مہربان تھے. انہوں نے پینل کمانڈر مسٹر ابراہم سے میری سفارش کر دی، جن کے ساتھ میں نے 3.5 سال گزارے. اس مدت میں میں نے بحیرہ روم اور دوسرے ملکوں کے 1-2 بحری سفر کیے اور واپسی پر مسٹر بیٹ کی ہمت افزائی سے لندن ہی میں قیام کا ارادہ کر لیا. اولڈ جوری میں ایک چھوٹا سا مکان خرید لیا اور نیو گیٹ اسٹریٹ کے بنیان ساز ایڈمنڈ برٹن کی چھوٹی لڑکی میری برٹن سے شادی کر لی. 2 سال بعد میرے استاد مسٹر بیٹ کا انتقال ہو گیا، جس کا اثر میرے کاروبار پر پڑا، جو بالکل ختم ہو گیا، اور آخر میں نے اپنی بیوی اور چند دوستوں کو لے کر بحری سفر پر جانے کا فیصلہ کر لیا. اب میں 2 جہازوں کا سرجن تھا. اسی حیثیت سے میں نے 6 سال کے اندر جزائر شرق الہند اور غرب الہند کے کئی سفر کر ڈالے. ان بحری سفروں کا آخری سفر کامیاب ثابت نہیں ہوا، اور چونکہ میں اب بحری سفر سے تھک گیا تھا، اس لیے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ گھر واپس آ گیا. پھر اولڈ جوری سے فیٹرلینڈ، وہاں سے دیپنگ چلا گیا. 3 سال بعد میں نے انیٹلوپ جہاز کے سربراہ کیپٹن ولیم پریچرڈ کی پیشکش قبول کر لی، جو شمال کی طرف بحری سفر کرنے والے تھے. ہم 4 مئی 1699 کو برسٹل سے ایک کامیاب بحری سفر پر روانہ ہو گئے. دوران سفر جزائر شرق الہند کے راستے میں وان ڈیمنڈ لینڈ سے شمال مغرب ہمارا جہاز شدید طوفان میں گھر گیا. جہاز کے عملے کے 12 آدمی سخت محنت کی وجہ سے مر گئے اور بعض بیمار ہو گئے. باقی لوگوں کی بھی حالت بڑی خراب تھی. 5 نومبر کو موسم کافی دھندلا تھا، مگر ہمیں جہاز کے بالکل ہی قریب ایک چٹان نظر آ گئی. हवा बहुत तेज़ थी, मगर हम हवा के ख़िलाफ़ लड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। अमले के 6 आदमियों में एक मैं भी था, जो बमुश्किल कश्ती को जहाज़ और चट्टान से बचाने के लिए दूर हटाने में कामयाब हो सके। कश्ती 3 मील गई होगी कि हम ज़्यादा देर तक काम करने के काबिल ना रहे और मजबूरन हमने अपने को समंदर की लहरों के रहमो करम पर छोड़ दिया। आधे घंटे में अचानक शुमाल से आने वाले तूफ़ान ने कश्ती को उलट दिया और हम सब पानी में डूबने लगे। मेरी किस्मत मुझे पानी पर बहाने लगी और मैं हवा और जवार भाटे के ज़ोर में आगे बढ़ता गया। मुझे अपने साथियों के मुतालिक मालूम ना हो सका कि उनका क्या हशर हुआ। मेरी टांगें पानी में डूबी हुई थीं और अंदर मुझे सतह नहीं मिल रही थी, लेकिन मैं बढ़ता ही चला गया और आखिर इस काबिल ना रह गया कि ज़्यादा देर तक पानी से लड़ सकूं। अब मैंने अपने को गहराई में पाया। इस अरसे में तूफ़ान बिल्कुल ख़त्म हो गया था। ढलवान इतनी नरम थी कि मुझे समंदर के किनारे तक पहुंचने के लिए 1 मील चलना पड़ा। फिर मैं तकरीबन 8 मील और बढ़ा, लेकिन मुझे कोई बस्ती और रहने वालों के कोई निशान नज़र ना आए। मैं बहुत थक गया था, इसलिए घास पर लेट गया जो बहुत नरम और छोटी थी। फिर गहरी नींद में सो गया। मेरी आंख उस वक्त खुली जब सूरज निकल चुका था। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन उठने के काबिल ना था और अपनी पीठ, टांगों और बाजुओं को हर तरफ मजबूती से जकड़ा हुआ पा रहा था। मेरे बाल लंबे और घने थे, वो भी इसी तरह बंधे हुए थे। इसके बाद मुझे अपने जिस्म के चारों तरफ बगलों से रानों तक मुहीं मुहीं तागे महसूस हुए, जिन्होंने मुझे जुम्बिश से मजबूर कर दिया और मैं सिर्फ ऊपर देख सकता था। धूप और गर्मी में कुछ इजाफा हुआ तो मुझे आँखों में तकलीफ़ महसूस होने लगी और उस लम्हे एक शोर भी सुनाई दिया जो शायद मेरे ही मुतालिक था, लेकिन मैं तो सिवाय आसमान के कुछ देख ही ना सकता था। थोड़ी देर बाद मैंने अपनी दाहिनी टांग में कुछ हरकत महसूस की और मेरी तवज्जो फितरी तौर पर उधर मबजूल हो गई। मैं अपनी आँख को जितना झुका सकता था उतना झुकाया तो मुझे 6 इंच लाबनी एक इंसानी मखलूक नज़र आई, जिसके हाथ में एक तीर कमान और पीठ पर तीरों का एक तरकश था। एन उसी वक्त ये 6 इंची इंसानी मखलूक बड़ी तादाद में सामने आ गई। मैं बड़े ताज्जुब में था और इसी ताज्जुब में मेरे मुंह से एक चीख निकल गई, जिससे वो सब डर कर भाग गए। बाजों के तो चोट भी लग गई, क्योंकि वो घबरा कर मेरे जिस्म पर से ज़मीन पर कूद पड़े थे, लेकिन जल्द ही वापस आए और इनमें से एक बड़ी दलेरी से आगे बढ़कर बारीक आवाज़ में चिल्लाया, जिसके अल्फाज थे हैकेना डेगल, जो बिल्कुल साफ सुनाई दिए। दूसरे लोगों ने भी यही अल्फाज दोहराए, लेकिन मैं कैसे समझ सकता था इसका मतलब क्या था। मैं सख्त मुसीबत में फंसा हुआ था। आखिर बड़ी जद्दोजहद के बाद रस्सियाँ ढीली हो गईं और मैं अपने बाएँ हाथ की रस्सियाँ तोड़ने में कामयाब हो गया, जो मजबूती के साथ ज़मीन से जकड़ा हुआ था। अब मैं बाएं हाथ को चेहरे तक आसानी से ले जा सकता था और बालों की रस्सियों को तोड़ सकता था। शदीद खींचातानी में मुझे सख्त तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन मुसलसल कोशिश से बाएं तरफ की रस्सियों को मैं इस बाएं लेकिन मुसलसल कोशिश से बाएं तरफ के बालों की रस्सियां टूट गईं और मैं इस काबिल हो गया कि सर को तकरीबन 2 इंच ऊँचा उठा सकूँ। इंसानी मखलूक फिर दौड़ी हुई आई, मगर इससे पहले कि वो लोग मुझे गिरफ़्तार करते, मैंने इन्हें ज़ोर से चिल्लाते सुना तो लघु फोना। फिर कुछ फासले से उन्होंने मेरे बाएँ हाथ पर तकरीबन 100 तीर बरसा दिए। ये तीर सुइयों के मानंद थे, जिन्होंने मेरे हाथ को छेद दिया। पीछे से उन्होंने हवा में फायरिंग की, जैसे कि हम यूरोप में बमबारी करते हैं। फिर इनमें से बहुत से मेरे जिस्म पर आ गिरे, मगर मैंने इन्हें महसूस नहीं किया, और कुछ मेरे चेहरे पर गिर पड़े, जिनको मैंने फौरन ही बाएं हाथ से निकाल कर फेंक दिया। मुझ पर जब तीरों की बारिश हुई तो मैं दर्द से कराह उठा। फिर मैंने ढीली रस्सियों को और ढीला करना शुरू कर दिया, लेकिन अब वो पहले से ज़्यादा तीर बरसाने लगे। इत्तेफाक से मैं भूरे रंग की चमड़े की सदरी पहने हुए था, जिससे मेरा जिस्म महफूज रहा। अब मैंने इसी को मुनासिब समझा कि रात होने तक खामोश पड़ा रहूं। हालांकि मेरा बायां हाथ आज़ाद था और मैं बआसानी अपने आप को छुड़ा सकता था, और इस मखलूक के बारे में तो मैंने समझ ही लिया था कि अगर ये लोग सब के सब इसी कदोकामत के हैं तो बड़ी से बड़ी तादाद में भी आकर मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने तीर अंदाजी बंद कर दी, लेकिन बाईं जानिब तकरीबन 4 गज के फासले पर मैंने लोगों को मुसलसल 1 घंटे तक कुछ काम करते पाया, और जब मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो वहां ज़मीन से तकरीबन 1.5 फुट ऊंचा स्टेज बना हुआ था, जिस पर चढ़ने के लिए 2-3 सीढ़ियां भी लगी हुई थीं। एक आदमी जो गरीने से उनका हाकिम मालूम होता था, उसने उस स्टेज पर जाकर एक तकरीर की, लेकिन उसका एक लफ्ज़ भी मेरी समझ में ना आया। اپنی تقریر شروع کرنے سے قبل وہ تین دفعہ چلایا، لینگرو ڈی ہلسن، جس کو دوسرے لوگوں نے دہرایا اور مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد تقریباً 50 آدمیوں نے آ کر میرے سر کے دائیں طرف کی رسیاں کاٹ دیں اور بائیں طرف مڑنے کے لیے آزاد کر دیا تاکہ میں ان آدمیوں کو دیکھ سکوں جنہوں نے تقریر کی تھی۔ ایک آدمی دوسرے تینوں آدمیوں سے مقابلتاً لمبا تھا جو اسٹیج پر ان کے ساتھ موجود تھے۔ ایک لڑکا بھی ان میں شامل تھا جو میری بیچ کی انگلی سے کچھ زیادہ بڑا ہوگا۔ دوسرے دونوں آدمی اس کے دونوں طرف کھڑے ہوئے تھے۔ میں بھوک سے نڈھال ہو رہا تھا کیونکہ جہاز چھوڑنے سے پہلے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے بھوک کے اظہار کے لیے میں نے اپنے منہ میں انگلی رکھی۔ حاکم نے میرا مطلب سمجھ لیا اور فوراً اسٹیج سے نیچے اتر آیا۔ اس نے میرے ارد گرد کئی سیڑھیاں لگانے کا حکم دے دیا، جس کے بعد تقریباً 100 آدمی گوشت سے بھرے ہوئے تھیلے لے کر میرے منہ تک چڑھنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ ان تھیلوں میں جانوروں کا گوشت تھا، بکری کا گوشت، بھیڑوں کا گوشت اور مختلف قسم کے پرندوں کا گوشت۔ میں ایک ایک تھیلا دو تین دفعہ میں کھا جاتا اور ایک ایک دفعہ میں تین تین روٹیاں۔ انہوں نے ایک بڑی مقدار میں کھانا فراہم کیا اور میں تقریباً 1000 آدمیوں کا کھانا کھا گیا۔ یہ دیکھ کر ان کو بڑا تعجب ہوا کہ میری خوراک اتنی زیادہ ہے۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے دوسرے اشارے سے کچھ پینے کے لیے طلب کیا اور انہوں نے ایک دفعہ مجھے پیمانے میں کچھ پینے کو دیا، جسے میں نے ایک ہی دفعہ میں پی لیا اور جو مشکل سے ایک بوتل کے برابر ہوگا۔ اس کا ذائقہ برگنڈی کے مشروب جیسا تھا اور بہت ہی مزیدار تھا۔ پھر انہوں نے دوسرا پیالہ دیا، وہ بھی میں پی گیا اور مزید طلب کیا، لیکن اب میری خواہش پوری کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ میں جب کھانے پینے سے فارغ ہو چکا تو لوگ خوشی سے میرے سینے کے اوپر ناچنے اور چلانے لگے۔ وہ بار بار یہی الفاظ دہرا رہے تھے، ہیکینا ڈگل۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ دونوں پیمانے نیچے پھینک دو، اور قبل اس کے کہ میں پیمانے نیچے پھینکوں انہوں نے نیچے کھڑے ہوئے لوگوں کو یہ الفاظ کہہ کر آگاہ کر دیا، لواچ میں بولا۔ کچھ دیر بعد جب انہوں نے محسوس کر لیا کہ اب مجھے کھانے کی زیادہ خواہش نہیں ہے، تو قطار میں سے ایک آدمی شاہانہ جاہ و جلال کے ساتھ نمودار ہوا اور میری دائیں ٹانگ کے اوپر چڑھ کے اور آگے بڑھتے بڑھتے چہرے تک پہنچ گیا، جس کے پیچھے تقریباً ایک درجن آدمی تھے جو اس کے ساتھیوں میں سے تھے۔ وہ میری آنکھ کے قریب آ کر ٹھہر گیا اور تقریباً 10 منٹ تک اپنے بادشاہ کا کوئی پیغام مجھے پہنچاتا رہا، جس کا منشا غالباً یہ تھا، جیسے کہ بعد میں مجھے معلوم ہوا، کہ ان کا دارالسلطنت وہاں سے آدھے میل کے فاصلے پر ہے اور بادشاہ کے حکم سے مجھے اس مقام پر پہنچنا ہے۔ اب میں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ مجھے آزاد کر دو، جس کے جواب میں اس نے اپنا سر ہلایا جیسے وہ میرا مطلب اچھی طرح سمجھ گیا ہو، لیکن ڈوریاں کھولنے کے بجائے اس نے ہاتھوں کی حرکت سے مجھے سمجھایا کہ میں ایک قیدی ہوں اور مجھے اسی طرح جانا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہارے کھانے پینے کا کافی مقدار میں انتظام کر دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ اس وقفے میں میں نے سوچا کہ بندھن توڑ کر فرار ہو جاؤں، اور میں نے اس کی کوشش شروع ہی کی تھی کہ میرے جسم، چہرے اور ہاتھوں پر تیر پڑنے لگے، جس سے میں زخمی ہو گیا۔ اب مجھے ان سے شکایت کا موقع مل گیا تھا، میرے پاس کھلا ہوا ثبوت موجود تھا، لہٰذا میں نے کہا کہ کیا مجھ کو اسی طرح خوش رکھا جائے گا اور یوں ہی میرے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ اس کے بعد جلد ہی میں نے اپنی بائیں طرف لوگوں کی ایک بڑی تعداد محسوس کی جو ڈوریوں کو ڈھیلا کر رہے تھے۔ اب ڈوریاں اتنی ڈھیلی ہو گئی تھیں کہ میں آسانی سے کروٹ لے سکتا تھا۔ پھر انہوں نے میرے چہرے اور دونوں ہاتھوں کی مرہم پٹی کی۔ کچھ دیر کے بعد تیروں سے پڑے ہوئے زخموں میں تکلیف کم ہو گئی اور میں قدرے آرام محسوس کرنے لگا۔ چونکہ میں بہت تھک گیا تھا اس لیے سو گیا اور تقریباً 8 گھنٹے تک سوتا رہا۔ یہ بات کچھ تعجب خیز نہیں ہے کہ شہنشاہ کے حکم سے مجھے نیند والی دوا پلا دی گئی تھی۔ میں جتنی دیر سوتا رہا، اس عرصے میں بادشاہ نے ایک فرمان جاری کیا کہ جس کی روح سے حکم دیا گیا کہ مجھے پہلے کی طرح قید کیا جائے، میرے کھانے پینے کا کافی مقدار میں انتظام کیا جائے اور میرے دارالحکومت تک لے جانے کے لیے ایک گاڑی تیار کی جائے۔ ان لوگوں کے پاس ایسی بہت سی گاڑیاں تھیں جن میں پہیے لگے ہوئے تھے اور جو درختوں کی لکڑی اور دوسری وزنی چیزیں لے جانے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ یہ گاڑیاں اکثر جنگ کے زمانے میں بھی کام آتی تھیں۔ ان میں 9 فٹ لمبا لکڑی کا تختہ لگا کر انجنوں کے ذریعے انہیں سمندر میں 300 یا 400 گز کے فاصلے پر لے جایا جاتا اور حسب ضرورت استعمال کیا جاتا۔ بادشاہ نے مجھے لے جانے کا حکم دیا تو 500 بڑھئی اور انجینئر فوراً کام پر لگ گئے۔ زمین سے 3 انچ اونچا، 7 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا لکڑی کا ایک تختہ تیار کیا گیا इस तख्ते में 22 पहिए लगाए गए और यह काम इस तेज़ी से हुआ कि गाड़ी 4 घंटे में तैयार हो गई। फिर मुझे इसमें डाल दिया गया। इस गाड़ी में ऊंचाई और गुंजाइश कम थी, इसलिए क्योंकि इसमें 80 खंभे लगाए गए थे। हर खंभा 1 फुट ऊंचा था, जिसमें एक एक हुक लगा हुआ था। डोरियां उन हुकों से बंधी हुई थीं जो मेरे जिस्म, टांगों और हाथों और गले को जकड़े हुए थीं। 900 तंदुरुस्त आदमी इन डोरियों को खींचने के लिए मुकर्रर थे, जो हुकों में लगी हुई परखचियों के ज़रिए खंभों से कसी हुई थीं। मुझे गाड़ी तक लाने और रस्सियों से जकड़ने में तकरीबन 3 घंटे सर्फ हुए। 500 तंदुरुस्त घोड़े मुझे दारुल खिलाफा तक ले जाने के लिए लगाए गए, जिसका फासला तकरीबन 0.5 मील था। हर घोड़े की लंबाई 4 इंच, ऊंचाई 0.5 इंच थी। इस तवील सफ़र में रात हो गई और हमको एक मकाम पर ठहरना पड़ा। 500-500 मुहाफिज मेरे दोनों तरफ तैनात थे, जिनमें से आधे हाथों में टॉर्च लिए और आधे हाथों में तीर कमान लिए हुए थे, ताकि मेरी ज़रा सी हरकत पर मुझे निशाना बना दिया जाए। दूसरी सुबह पौ फटते ही हमारा सफ़र फिर शुरू हो गया और 200 गज़ का सफ़र तय करने के बाद हम दोपहर तक शहर के फाटक पर पहुंच गए, जिसकी खबर सुनकर शहंशाह और इसके दरबारी मुझे देखने के लिए आ गए। फिर मुझे एक कदीम मंदिर के करीब ले जाकर ठहराया गया, जो बहुत कम इस्तेमाल होता था। इस मंदिर की इमारत में मेरे रहने का इंतज़ाम किया गया। उसका जो दरवाज़ा शुमाल की तरफ था, वो तकरीबन 4 फिट ऊँचा और 2 फिट चौड़ा था। मैं इससे बआसानी गुजर सकता था। फाटक के हर तरफ एक एक छोटी सी खिड़की थी, जो ज़मीन से 6 इंच की बुलंदी पर थी। थोड़ी देर के बाद बादशाह के बहुत से लोहार तकरीबन 91 जंजीरें लेकर आए। ये जंजीरें इतनी बड़ी थीं जैसी यूरोप में ख़वातीन की घड़ियों की जंजीरें होती हैं। उन्होंने मेरी बाईं टांग में जंजीर बांध कर इसमें 36 ताले डाल दिए। मैंने मंदिर की दूसरी जानिब देखा तो तकरीबन 20 फीट के फासले पर एक बड़ी सड़क थी, जिसके एक किनारे पर 5 फीट ऊंचा एक बुर्ज बना हुआ था। बादशाह माँ अपने दरबारियों के बड़ी शान शौकत के साथ मुझे देखने के लिए इस बुर्ज पर बैठा हुआ था, और तकरीबन 10 लाख आदमी इसके इर्द गिर्द जमा थे, जो बड़े शहरों से आए थे। मेरे मुहाफिजों की तादाद मेरे ख्याल में 10,000 से ज़्यादा न थी। अभी मैं लोगों की तादाद का शुमार कर ही रहा था कि बहुत से लोग सीढ़ियां लगाकर मेरे जिस्म पर चढ़ गए और जिस्म पर बंधी डोरियों का बगौर मुआयना करने लगे। जब उन्हें यकीन हो गया कि जंजीरें तोड़ना मेरे लिए नामुमकिन है, तो उन्होंने तमाम रस्सियां काट दीं। ये रस्सियां खुलने पर मैं उठकर खड़ा हो गया। मेरे उठने और चलने को देखकर लोगों की हैरत की कोई इंतहा न रही। जंजीर जो मेरे बाएं पैर में बंधी हुई थी, वो तकरीबन 2 गज लंबी थी, इसलिए मैं इस दायरे में चल फिर सकता था और मंदिर में भी जा सकता था। जिसमें इतनी जगह थी कि मैं टांगें फैलाकर लेट सकूं। बाब 2। जब मैंने अपने आप को बिल्कुल आज़ाद पाया, तो पूरे शहर का जायज़ा लिया, जो किसी बाग की तरह था और जिसके खेतों का रकबा आम तौर पर 40 मुरबा फिट था। खेत दूर से ऐसे लगते थे जैसे सफ़ेद फूलों की चादर बिछी हो। पेड़ों की तादाद भी बहुत थी। सबसे बड़ा पेड़ मेरे अंदाज़े के मुताबिक 7 फुट ऊंचा होगा। बहरहाल, मुझे पूरे शहर और इसके आसपास के इलाके को देखकर ऐसा महसूस हुआ जैसे फिल्म के पर्दे पर किसी शहर की रंगीन तस्वीर देख रहा हूँ। अब शहंशाह बिर्द से नीचे उतरा और घोड़े पर सवार होकर मेरी तरफ बढ़ा। फिर उसने अपने नौकरों को मुझे खाना पानी का हुक्म दिया, जो शहंशाह का हुक्म पाते ही खाना लाने के लिए दौड़ पड़े और पहियों वाली गाड़ी में भर कर मेरी तरफ घसीट कर लाए। मैंने इन गाड़ियों को अपनी तरफ खींच लिया और थोड़ी ही देर में इन्हें खाली कर दिया। गाड़ियों में से 20 गाड़ियां गोश्त और 10 गाड़ियां मशरूबात से भरी हुई थीं। एक गाड़ी का खाना मैं 2-3 लुकमों में खा जाता, और शराब और मशरूब की 10 बोतलें मेरे एक घूंट के बराबर थीं। शहंशाह और उसकी नौजवान मलका दोनों औरतों के झुरमट में थे, जो थोड़े फासले पर कुर्सियों पर बैठी हुई थीं। मगर जब शहंशाह का घोड़ा एक हादसे से दोचार हुआ, तो वह अपने आदमियों के पास आ गईं। शहंशाह अपने दरबारियों में सबसे ज़्यादा लंबा और तकरीबन मेरे नाखून के बराबर चौड़ा था। उसकी शक्ल व सूरत भी अच्छी थी। मेहराबदार नाक और जैतूनी चेहरा, बिल्कुल सादा से कपड़े थे। सर पर हीरे और जवाहरात से जड़ा हुआ सोने का एक चमकता हुआ ताज था। उसने अपने हाथ में खुली हुई तलवार इस डर से पकड़ रखी थी कि अगर मैं रस्सियां तोड़ दूं तो वो अपनी हिफाजत कर सके। उसकी नयाम भी सोने की थी, जिस पर हीरे जड़े हुए थे। आवाज़ तेज़ लेकिन बहुत साफ़ थी, जिसको मैं आसानी से सुन सकता था।
मंदिर का ये घर मेरे लिए बहुत तकलीफ़ दे साबित हुआ, क्योंकि वहाँ मुझे ज़मीन पर लेटना पड़ता था और मैं इसका आदी ना था। इस तरह तकरीबन 15 दिन गुजर गए। इस अरसे में शहनशाह ने मेरे लिए पलंग फ्राहम करने का हुक्म दिया, जिसकी तामील की गई, और 600 पलंग गाड़ियों में लाए गए, जिनको जोड़ने का काम मंदिर के अंदर शुरू किया गया। 150 बिस्तरों को सी कर मेरे लिए एक लंबा चौड़ा गद्दा बनाया गया और अब मैं किसी हद तक आराम से था। इसके बाद शहनशाह ने हुक्म दिया कि शहर के इर्द गिर्द 900 गज़ के अंदर चारों तरफ जो लोग आबाद हैं, वो हर सुबह 6 गायों और 40 भेड़ों का गोश्त जमा किया करें। रोटियों और मशरूबात का भी काफ़ी मकदार में इंतज़ाम किया जाए। तकरीबन 600 आदमी मेरी खदमत गुजारी के लिए मुकर्रर हुए। इन आदमियों की रिहाइश के लिए भी बेहतरीन इंतज़ाम किया और मेरे घर के चारों तरफ उनके रहने के लिए खैमे लगवा दिए गए। यह इंतज़ाम करने के बाद शहनशाह ने दर्जियों को मुल्क के फ़ैशन के मुताबिक मेरे लिए एक सूट सीने का हुक्म दिया। इसके अलावा उसने 6 आला तालीम याफ्ता मुअल्लिम मुकर्रर किए ताकि मैं उनकी ज़बान सीख लूँ। इसके अलावा उसने ये हुक्म भी दिया कि बादशाही घोड़े रोज़ाना मेरे सामने दौड़ाए जाएँ और मुहाफ़िज़ों के ग्रोह को मशक कराई जाए ताकि मैं उनके तौर तरीक़ों से वाकिफ़ हो सकूँ। तकरीबन 3 हफ़्ते में मैंने उनकी ज़बान में कुछ शुद्बुद हासिल कर ली और इस दौरान बादशाह ने कई बार मुलाकात की। वो इस बात से बहुत खुश था कि मैंने किसी हद तक इसकी ज़बान सीख ली थी। एक दिन उसने ख्वाहिश जाहिर की कि वो मेरी तलाशी लेना चाहता है कि कहीं मैंने कोई हथियार तो नहीं छुपा रखा है। इस काम के लिए उसने 2 अफसरों को तैनात किया जो अज़ीम शख्सियत के मालिक थे। मैंने कहा, मैं ख़ुद कपड़े उतार के झाड़े देता हूँ, लेकिन शहनशाह ने मंजूर नहीं किया और जवाब दिया कि शाही कानून के मुताबिक दोनों अफसरों को तलाशी लेनी चाहिए। मैंने दोनों अफसरों को हाथ से उठाकर कोट की एक जेब में डाल दिया। पहली जेब की तलाशी के बाद उनको इस जेब से निकाल कर दूसरी जेब में रख लिया। घड़ी वाली 2 जेबों और 1 खुफिया जेब को छोड़कर मैंने तमाम जेबों की तलाशी दे दी। पहली छोटी जेब में एक चांदी की घड़ी थी और दूसरी जेब में एक बटवा था जिसमें थोड़ा सा सोना था। जब दोनों अफसर तलाशी ले चुके तो उन्होंने कागजात और कलम संभाले और तलाशी के दौरान उन्हें मेरी जेबों में जो चीज़ें नज़र आई थीं उनकी एक मुफसल फहरिस्त तैयार की। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं उन्हें नीचे उतार दूँ ताकि वो फहरिस्त बादशाह तक पहुँचा सकें। इस फहरिस्त को उन्होंने इस तरह तरतीब दिया था। अजीम इंसानी पहाड़ की दाहिनी जेबों की तलाशी में हमने सिर्फ खुरदरे कपड़े का एक टुकड़ा पाया जो शाही कमरे के कालीन के बराबर होगा। बाईं तरफ की जेब में हमें एक चांदी का बड़ा संदूक मिला जो धात के ढकने से ढका हुआ है। जो चीज़ें हमें तलाशी में मिली हैं उनमें एक चीज़ भी ऐसी नहीं थी जिसे हम उठा सकते। वास्केट की दाहिनी जेब में पतली सी सफ़ेद चीज़ का 3 आदमियों की मोटाई के बराबर एक बंडल है जिसके ऊपर कोई दूसरी चीज़ लिपटी हुई है जो एक मजबूत रस्सी से कसा हुआ है। इसके अलावा एक कागज़ पर काले नक्श बने हुए हैं, हमारे ख्याल में वो लिखा हुआ होगा। उसका हर लफ्ज़ हमारे हाथ की निसफ हथेली के बराबर है। बाईं तरफ के जेब में एक किस्म का इंजन है जिसके पीछे की तरफ 20 लंबे लंबे खंभे लगे हुए हैं। इसके मुतालिक हमारा ख्याल है कि इंसानी पहाड़ इससे अपने बालों में कंघी करता होगा। दाहिनी तरफ की जेब में बड़ी जेब में जिसका आधा हिस्सा ढका हुआ है हमने लोहे का एक खोखला सतून देखा। इस सतून की लंबाई तकरीबन 1 आदमी के बराबर होगी। इसमें मजबूत लकड़ी का एक टुकड़ा कसा हुआ है जो सतून से बड़ा है। एक तरफ अजीबोगरीब किस्म के बड़े बड़े लोहे के टुकड़े चिपके हुए हैं। इस चीज़ के मुतालिक हम नहीं जानते और ना कोई अपनी राय पेश कर सकते हैं। बाईं तरफ की बड़ी जेब में भी इसी किस्म का दूसरा इंजन है। दाहिनी तरफ की सबसे छोटी जेब में सफ़ेद और लाल धात के कई किस्म के छोटे बड़े गोल और चौकोर टुकड़े हैं। उनका हजम भी मुख्तलिफ है। सफ़ेद टुकड़े तो चांदी के मालूम होते हैं जो किसी कदर बड़े भी थे और भारी भी, और जिनको हम यानी मैं और मेरा साथी मुश्किल से उठा सकते थे। इंसानी पहाड़ की 2 जेबें और भी हैं जिसमें हम लोग दाखिल नहीं हो सके। इन जेबों को घड़ी रखने वाली छोटी जेब कहते हैं। इन जेबों पर ढके हुए कपड़े में एक एक सुराख है। दाहिनी तरफ की जेब में बाहर की तरफ एक बड़ी चांदी की जंजीर लटक रही है और अंदर की तरफ एक अजीबोगरीब किस्म का इंजन है। इस इंजन की बनावट ग्लोब की सी है। ये आधी चांदी और आधा शफाफ धात का है। शफाफ हिस्से में एक दायरा है जिसमें कुछ निशान खिंचे हुए हैं। बहरहाल जहाँ पनाह के हुक्म के मुताबिक हमने इसकी तमाम जेबों की तलाशी ली, जिसके दौरान हमने देखा कि इसकी कमर के गिर्द जानवर की खाल का बना हुआ एक टपका बंधा हुआ है। बाईं तरफ टपके में एक तलवार रखी हुई है। तलवार की लंबाई तकरीबन 5 आदमियों के बराबर है। दाहिनी तरफ एक थैला है जिसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में कई ग्लोब या गेंदे हैं जो भारी दांत की हैं और हमारे सरों से बड़ी हैं। दूसरे हिस्से में थोड़े से काले काले जर्रे भरे हुए हैं। ये जर्रे ज़्यादा भारी नहीं हैं और तकरीबन 50 आदमी उनको अपनी हथेलियों में ले सकते हैं। ये है वो मुफसल फहरस्त जो हमने इंसानी पहाड़ के जिस्म का जायज़ा लेने के बाद तैयार की है। शहनशाही दौरे हुकूमत के 89 चांद के 14वें दिन दस्तखत किए गए और मोहर लगाई गई। क्लेफरन फ्रीलाक मर्सी फ्रीलाक। जब ये फहरिस्त शहनशाह के सामने पढ़कर सुनाई गई तो उसने इन तमाम चीज़ों को महफूज रखने और उनको दिखाने का हुक्म दिया। सबसे पहले उसने मुझसे तलवार की नुमाइश की ख्वाहिश की। मैंने इसके हुक्म की तामील की और तलवार नयाम से बाहर निकाल ली। जब मैंने तलवार निकाली तो शहनशाह ने 3,000 फौजियों को तीर कमान के साथ तैयार रहने का हुक्म दिया, जो कुछ फासले पर खड़े हुए थे। फिर शहनशाह ने मुझे तलवार चलाने का इशारा किया। मेरी तलवार समंदर के पानी से जंग आलूद हो चुकी थी, फिर भी उसका कुछ हिस्सा चमकदार था। बादशाह के हुक्म से जब मैंने तलवार को घुमाया तो सूरज की किरणों से इसमें एक चमक पैदा हुई। जब इसका अक्स फौजियों की आंखों पर पड़ा तो वो चुंधियाने लगीं और उन पर ऐसी हैबत तारी हुई कि वो खौफ से चिल्ला उठे। बादशाह भी खौफजदा हो गया और इसने तलवार को नियाम में रख लेने का हुक्म दे दिया। फिर शहनशाह ने अगली चीज़ तलब की। इसका मकसद खोखले लोहे के सतूनों से था, जिसको मैंने समझ लिया और जेब से निकाल लिया। पहले इसके इस्तेमाल के तरीके समझा दिए, फिर इसमें बारूद भरकर बादशाह को आगाह किया कि वो डरे नहीं। इसके बाद हवा में फायर कर दिया। पिस्तौल के धमाके से इन लोगों पर तलवार की चमक से ज़्यादा खौफदारी हुआ और लगभग 100 आदमियों ने गिरकर उसी वक्त दम तोड़ दिया। बादशाह ज़मीन पर खड़ा तो रहा, लेकिन थोड़ी देर तक उसकी हालत भी ख़राब रही और वो अपने आप को पूरी तरह काबू में ना रख सका। मैंने अपने दोनों पिस्तौल, गोलियां और बारूद की थैली, ये सब चीज़ें उसको दे दीं और उससे दरख्वास्त की कि वो बारूद को आग से दूर रखे, वरना वो फौरन आग पकड़ लेगा जिसमें एक धमाका होगा और इसका महल हवा में उड़ जाएगा। इसके बाद मैंने जेब से घड़ी निकाली। शहनशाह उस घड़ी को देखने का बहुत मुश्ताक था। उसने फौरन अपने नौजवान सिपाहियों को, जो कद में सबसे ज़्यादा लंबे थे, हुक्म दिया कि वो इस घड़ी को एक डंडे में लटकाकर और डंडे को कंधों पर रखकर एहतियात से ले आएं। इसके साथ ही ये पार्ट ख़त्म हुआ। मज़ीद रिकॉर्डिंग के लिए दूसरा पार्ट सुनें।